एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है।
हाँ बिल्कुल, टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन।
जी, और ये एक ऐसी किताब है जो दावा करती है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक सोई हुई शक्ति है, एक विशाल काय सा कुछ।
हाँ, एक जायंट
जिसे जगाकर हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी को डिजाइन करने की बात है। मतलब,
और ये आज के समय में बहुत जरूरी लगता है ना, जब कई लोग फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, या असंतुष्ट, या शायद पता नहीं कि जाना कहाँ है।
बिल्कुल दिशाहीन। तो ये जानना कि क्या वाकई हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं को समझकर कुछ कुछ खास तरीकों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है हमें अपनी भूमिका समझने और अपनी लक्ष्य मतलब गोल्स तय करने में मदद करने का वादा करती है।
एग्जैक्टली, वादा यही है कि हम सिर्फ किस्मत या हालातों के भरोसे ना रहें, अपनी जिंदगी के ड्राइवर बने। तो देखते हैं इस किताब में ऐसा क्या खास है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से, टोनी रॉबिन्स। ये नाम शायद ही किसी ने न सुना हो, खासकर जो पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ हेल्प में रुचि रखते हैं।
हाँ, काफी बड़ा नाम है। अमेरिकी लेखक हैं, कोच हैं, और शायद दुनिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक। उनको पीक परफॉर्मेंस यानी शिखर प्रदर्शन हासिल करवाने का एक्सपर्ट माना जाता है।
और जो बात मुझे दिलचस्प लगती है वो ये है कि उनकी एक्सपर्टीज किसी यूनिवर्सिटी डिग्री से नहीं आई है ना।
सही बात है, ये कोई एकेडमिक या साइकोलॉजिस्ट नहीं है। इन्होंने दशकों तक, मतलब सच में लाखों लोगों के साथ सीधे काम किया है। बड़े बड़े सेमिनार्स, ऑडियो प्रोग्राम्स, पर्सनल कोचिंग, इनका ज्ञान एकदम जमीनी हकीकत और तजर्बे पे बेस्ड है।
हाँ, वो सफल लोगों के पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, वो सोचते कैसे हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, आदतें क्या हैं।
बिल्कुल, और इसके लिए वो अलग अलग फील्ड से सीखते हैं, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP, कॉग्निटिव साइकोलॉजी वगैरह, और इन सबको मिलाकर उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है।
हाँ, वो NAC वाला, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग,
वही NAC। इस पर हम आगे बात करेंगे। और देखिए, उनकी अपनी कहानी भी कमाल की है। एक बहुत मुश्किल गरीबी वाले बचपन से उठकर वो न सिर्फ करोड़पति बने, बल्कि दुनिया के बड़े नेता सेरेना विलियम्स जैसे टॉप एथलीट्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के सलाहकार भी बने।
तो ये जो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उनकी बातों को वजन देता है ना। वो सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहे, उन्होंने ये सब खुद जिया है, खुद करके देखा है।
बिल्कुल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
तो अब आते हैं सीधे किताब पर, अवेकन द जायंट विद इन। ये किताब असल में है क्या? क्या इसे हम एक तरह का गाइड कह सकते हैं पर्सनल मास्टरी के लिए?
हाँ, गाइड या मैनुअल कह सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ इंस्पायर करना नहीं है, बल्कि बदलाव लाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप तरीका, एक टूल किट देना है। ये समझाती है कि कैसे अपनी भूमिका, अपना रोल समझें और अपने लक्ष्य, अपने गोल्स तक पहुंचें।
अच्छा, और ये किस आइडिया पर बेस्ड है?
किताब इस बुनियादी विचार पर बनी है कि हम अनजाने में कुछ सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स पर चलते हैं।
प्रोग्राम्स जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स?
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये प्रोग्राम्स हमारे विश्वासों, हमारे वैल्यूज, हमारे नियमों से बनते हैं, और यही हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शन सब कंट्रोल करते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि हम अपने दिमाग के मास्टर प्रोग्रामर बन सकते हैं।
मतलब इन प्रोग्राम्स को बदल सकते हैं?
हाँ, समझकर बदल सकते हैं, ताकि वो हमें हमारे मन चाहे गोल्स की तरफ ले जाएं।
ये किताब एक सफर की तरह लगती है फिर तो?
है बिल्कुल। शुरुआत होती है ये समझने से कि असली ताकत हमारे निर्णयों में है। फिर ये बताती है कि कैसे दर्द और खुशी, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, वो हमारे हर काम के पीछे होता है।
हर काम के पीछे?
हाँ, हम हर काम या तो दर्द से बचने के लिए करते हैं या खुशी पाने के लिए, और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, बदलाव नहीं कर पाते।
अच्छा,
और इसी समझ पर रॉबिन्स ने बदलाव का पूरा सिस्टम बनाया है।
एग्जैक्टली।
इसमें क्या क्या शामिल है? अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना, उन्हें बदलना, अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करना सीखना, अपने असली वैल्यूज को पहचानना, और ऐसे गोल्स बनाना जो हमारी पहचान से मेल खाते हों।
और ये किन एरियाज पर फोकस करती है?
किताब 5 मेन एरियाज पर फोकस करती है: इमोशंस, बॉडी यानी सेहत, रिश्ते, पैसा और टाइम।
चलिए अब किताब के मुख्य हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपने कहा 4 भाग हैं। पहला भाग है अपनी शक्ति को उजागर करें, अनलीश योर पावर। ये फाउंडेशन सेट करता है।
हाँ, ये नींव रखता है। इस हिस्से में रॉबिन्स एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, एक वास्तविक निर्णय या रियल डिसीजन क्या होता है।
अच्छा, क्या होता है?
वो कहते हैं कि असली निर्णय वो है जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाए, जिसके पीछे पूरी कमिटमेंट हो। ऐसा निर्णय, वो कहते हैं, तुरंत जिंदगी बदल सकता है।
तुरंत?
हाँ, और वो तीन खास निर्णयों पर फोकस करते हैं जो हमारी जिंदगी चलाते हैं। पहला, हम किस पर ध्यान देते हैं, यानी फोकस। दूसरा, हम चीजों का मतलब क्या निकालते हैं, यानी मीनिंग। और तीसरा, हम करते क्या हैं, यानी एक्शन। इन पर कंट्रोल मतलब जिंदगी पर कंट्रोल।
और यहीं पर वो दर्द और खुशी वाला सिद्धांत आता है।
बिल्कुल, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। रॉबिन्स का कहना है कि हम बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि हम बदलाव से जुड़े पॉसिबल दर्द को ना बदलने के पक्के दर्द से ज्यादा बड़ा मान लेते हैं।
कोई उदाहरण दे सकते हैं?
जरूर। जैसे सुबह जल्दी उठने का आलस, वो उस पल की छोटी सी खुशी या कहें दर्द से बचाव है। ये हमें लंबे समय में हेल्दी रहने के बड़े फायदे बड़ी खुशी से ज्यादा खींचता है। या मान लीजिए किसी से मुश्किल बातचीत करने का दर्द, वो हमें रिश्ते सुधारने के फायदे खुशी से रोक देता है।
समझ गई। तो यहीं पर हमारे विश्वासों, बिलीफ सिस्टम्स का रोल आता है।
हाँ, ये हमारे दिमाग के कंट्रोल रूम जैसे हैं। यही तय करते हैं कि किस चीज से हमें दर्द मिलेगा और किससे खुशी। अगर हमारा विश्वास है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हम शायद कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना। रॉबिन्स कहते हैं कि इन विश्वासों को बदला जा सकता है।
और कैसे बदला जा सकता है? यही वो NAC सिस्टम आता है।
हाँ, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। रॉबिन्स दावा करते हैं कि परमानेंट चेंज तुरंत हो सकता है अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करने के लिए एक खास प्रोसेस फॉलो करें।
अच्छा, क्या है वो स्टेप्स?
इसके 6 मुख्य कदम है। पहला, साफ तौर पर पहचाने कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपको रोक रहा है।
दूसरा,
लिवरेज हासिल करें, मतलब ना बदलने से इतना ज्यादा दर्द जोड़ें और बदलने से इतनी ज्यादा खुशी जोड़ें कि बदलाव ना करना नामुमकिन लगे।
लिवरेज, ओके।
तीसरा,
उस पुराने रोकने वाले पैटर्न को बाधित करें, इंटरप्ट करें।
चौथा, एक नया सशक्त विकल्प बनाएं जो आप करना चाहते हैं। पांचवा, इस नए पैटर्न को बार बार दोहराकर कंडीशन करें, आदत बनाएं।
और छठा?
छठा, टेस्ट करें, देखें कि ये नया पैटर्न काम कर रहा है या नहीं। ये एक पूरा प्रोसेस है।
दिलचस्प है। इसके बाद आता है भाग दो, नियंत्रण लेना, मास्टर सिस्टम। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है।
हाँ, ये हिस्सा और ज्यादा प्रैक्टिकल कैसे करें पर फोकस करता है।
और यहीं पर वो द ट्रायड की बात आती है।
बिल्कुल, ट्रायड। ये वो तीन चीजें हैं जो मिलकर हमारी किसी भी पल की इमोशनल स्टेट तय करती हैं।
तीन चीजें कौन सी?
पहला है फिजियोलॉजी, मतलब हम अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारा पोस्चर, हमारी ब्रीदिंग, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा है फोकस, हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। और तीसरा है भाषा विश्वास, हम अपने अनुभव को बयान करने के लिए किन शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं।
और रॉबिन्स कहते हैं कि इनमें से किसी एक को भी बदलकर हम अपनी भावना बदल सकते हैं तुरंत।
हाँ, तुरंत। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब अगर मूड खराब है तो सिर्फ सीधा तन कर बैठने, गहरी सांस लेने और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने से, यानी फिजियोलॉजी बदलने से भी फर्क पड़ सकता है।
या फिर फोकस बदलने से, जैसे ये सोचने के बजाय कि सब कुछ गलत हो रहा है, ये पूछना कि इस स्थिति में क्या अच्छा हो सकता है।
बिल्कुल, या मैं अभी किस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये फोकस बदलना हुआ।
और तीसरा पहलू, भाषा, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है।
हाँ, रॉबिन्स परिवर्तनकारी शब्दावली, ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी की बात करते हैं। मतलब हम अपनी भावनाओं को जिस तरह के शब्दों से बयां करते हैं, वो हमारी भावनाओं को और गहरा या हल्का कर सकते हैं।
जैसे
मैं गुस्से में हूं की जगह शायद मैं थोड़ा परेशान हूं कहना, या मैं ठीक हूं की जगह मैं शानदार महसूस कर रही हूं कहना। ये हमारे अनुभव को बदल सकता है।
और वो रूपकों वाली बात भी इसी में है, जीवन एक संघर्ष है बनाम जीवन एक खेल है।
हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। हम जीवन के लिए कौन से मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारी सोच और भावनाओं पर गहरा असर डालता है।
इसके बाद आता है भाग 3, जीवन को आकार देने के 7 दिन। ये वर्कबुक जैसा हिस्सा है।
हाँ, ये सबसे हैंड्स ऑन पार्ट है। एक 7 दिन का प्रोग्राम है जो आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर लागू करने में गाइड करता है।
अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। हर दिन एक अलग एरिया पर,
फिजिकल हेल्थ और एनर्जी। दिन 3, रिश्ते, खासकर अपने और दूसरों के रूल्स को समझना। दिन 4, पैसे को लेकर अपनी सोच और आदतें, दिन 5 अपनी पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जीवन के सिद्धांत तय करना,
और दिन 6
अपने वैल्यूज और गोल्स को क्लियर करना ताकि टाइम का सही इस्तेमाल हो, और दिन 7 आराम, खेल, मस्ती का महत्व। यह हिस्सा किताब को सिर्फ पढ़ने की चीज से आगे ले जाकर करने की चीज बनाता है, एक्शन लेने पर मजबूर करता है।
और फिर आखिरी भाग, भाग 4, भाग्य में एक सबक।
हाँ, अ लेसन इन डेस्टिनी। ये आखिरी भाग सारी बातों को एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। यहाँ रॉबिन्स योगदान, कंट्रीब्यूशन के महत्व पर जोर देते हैं।
योगदान मतलब दूसरों के लिए कुछ करना।
बिल्कुल, उनका तर्क है कि खुद पर मास्टरी हासिल करने के बाद असली और स्थायी खुशी दूसरों के जीवन में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने से मिलती है।
ये बात तो हमारी संस्कृति की सेवा की भावना से काफी मिलती जुलती है।
हाँ बिल्कुल, जब हम खुद से आगे बढ़कर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या दुनिया, तो जीवन को एक गहरा अर्थ मिलता है। ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस से आगे की बात है।
तो अगर हम इस पूरी किताब के निचोड़ मतलब की थीम्स को देखें तो कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं।
हाँ, कई जरूरी बातें हैं।
मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है निर्णय की शक्ति, पावर ऑफ डिसीजन। हम हालात के शिकार नहीं हैं, हम हर पल चुनाव करते हैं और यही चुनाव हमारी दिशा तय करते हैं। ये अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने जैसा है, अपना रोल समझने जैसा।
बिल्कुल सही। दूसरी अहम बात वो दर्द और खुशी का सिद्धांत, पेन प्लेजर प्रिंसिपल। ये समझना कि हमारे सारे काम इन दो ताकतों से चलते हैं और इन्हें होशपूर्वक इस्तेमाल करना सीखना, यही बदलाव की चाबी है।
जैसे वो टालमटोल वाला उदाहरण था।
हाँ, हम टालमटोल क्यों करते हैं? शायद काम के दर्द से बचने के लिए। रॉबिन्स कहते हैं कि उस काम को न करने के लंबे समय के दर्द को महसूस करो और करने की खुशी को, इससे एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है।
तीसरा, अवस्था पर महारत, मास्टरी ऑफ स्टेट। हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारी रोजमर्रा की इमोशनल स्टेट की क्वालिटी है और हम इसे ट्रायड के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं।
हाँ, फिजियोलॉजी, फोकस, भाषा, मतलब खराब मूड को मिनटों में बदला जा सकता है। सुनने में शायद थोड़ा जादुई लगे, पर यह प्रैक्टिस से संभव है।
चौथा, विश्वास हकीकत बनाते हैं, बिलीव्स क्रिएट रियलिटी। हमारे गहरे बैठे विश्वास हमारी दुनिया को आकार देते हैं।
सही बात, अगर हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम शायद कोशिश भी नहीं करेंगे। इन लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और उन्हें ताकत देने वाले विश्वासों से बदलना, ये बहुत जरूरी है।
पांचवा, मूल्यों और लक्ष्यों में स्पष्टता, क्लैरिटी इन वैल्यूज एंड गोल्स। जब हमें पता होता है कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, हमारे वैल्यूज, और हम उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य तय करते हैं, तो जिंदगी में एक दिशा और मकसद आता है, अंदरूनी टकराव कम होते हैं।
हाँ, और छठा, जिसे रॉबिन्स कहते हैं CANI।
CANI,
हाँ, कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, निरंतर और कभी न खत्म होने वाला सुधार, मतलब हमेशा सीखते रहना, बेहतर बनते रहना। छोटे छोटे लगातार सुधार बड़े लाती जलाते हैं। ये परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस है।
और अंत में सातवां, योगदान, कंट्रीब्यूशन।
हाँ, हाँ, जैसा हमने पहले कहा, सच्ची खुशी सिर्फ पाने में नहीं, देने में भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या किसी बड़े काम में हाथ बटाते हैं तो हमें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है।
वाकई, इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना?
हाँ, हाँ।
जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ, बिल्कुल, कोट करने लायक बहुत कुछ है।
जैसे एक बहुत मशहूर है, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। आपके निर्णय के क्षणों में ही आपकी नियति आकार लेती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर पल एक अवसर है, एक चुनाव है, हम अपनी कहानी के लेखक हैं।
बिल्कुल, और एक और पावरफुल आइडिया है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज लर्निंग हाउ टू यूज पेन एंड प्लेजर इंस्टेड ऑफ हैविंग पेन एंड प्लेजर यूज यू।
सफलता का रहस्य दर्द और खुशी का उपयोग करना सीखना है, बजाय इसके कि दर्द और खुशी आपका उपयोग करें।
मतलब इन अंदरूनी ताकतों के प्रति जागरूक होना, क्या हम इन्हें मैनेज कर रहे हैं या ये हमें चला रही हैं?
एग्जैक्टली, और ये वाला भी बहुत गहरा है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है।
हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद है।
कितना सरल पर कितना सच, हम जिस चीज पर लगातार ध्यान देंगे वही हमारी जिंदगी में बढ़ेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी।
सही कहा, ये हमें अपने मेंटल फोकस की ताकत का एहसास कराता है। और आखिर में एक और सीधी बात, इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉटन।
यदि आप वही करते हैं जो आपने हमेशा किया है तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिला है। ये तो बदलाव की जरूरत पर सीधी चोट है। अगर नतीजे अलग चाहिए तो तरीके बदलने होंगे।
हाँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें उतारा कैसे जाए प्रैक्टिकली।
हाँ, ये जरूरी सवाल है, और इसके कई आसान तरीके हैं। जैसे अगर टालमटोल की आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, तो दर्द खुशी सिद्धांत इस्तेमाल करें। उस काम को न करने के सारे बुरे नतीजे सोचें, फील करें उन्हें दर्द, और फिर उसे पूरा करने के बाद मिलने वाली राहत खुशी फायदे सोचें। खुशी अक्सर ही दिमागी कसरत ही हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है।
और अगर मूड खराब हो तो वो ट्रायड वाला।
हाँ, तुरंत ट्रायड याद करें, सीधे होकर बैठें, कुछ गहरी सांसें लें, जबरदस्ती ही सही मुस्कुराएं, ये हुई फिजियोलॉजी। ध्यान बदलें, सोचें कि इस पल में क्या अच्छा है या किसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ये हुआ फोकस। और खुद से कहें, ये मुश्किल है पर मैं संभाल सकती हूँ, बजाय ये कहने के कि सब बेकार है, ये हुई लैंग्वेज। आप हैरान होंगी कि कितनी जल्दी फर्क महसूस होता है।
और कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो, जैसे ज्यादा मीठा खाना,
तो NAC का सिद्धांत काम आ सकता है। जैसे ही मीठा खाने का मन करे, उस पैटर्न को तोड़ें, इंटरप्ट करें, शायद एक रबर बैंड कलाई पर खींचकर छोड़ें। उस आदत से जुड़े दर्द को सोचें, जैसे सेहत खराब होना, फिर तुरंत एक हेल्दी विकल्प सोचें, जैसे फल खाना, और उससे मिलने वाली खुशी, जैसे कंट्रोल और सेहत का एहसास। पर ध्यान दे, नैना चॉइस और कंडीशनिंग।
और रिश्तों में वो नियमों रूल्स वाली बात।
हाँ, वो बहुत काम की है। अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पार्टनर या परिवार वालों को प्यार या सम्मान महसूस करवाने के लिए क्या चाहिए, उनके रूल्स क्या हैं। उनसे पूछें, तुम्हें कब लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, या तुम्हारे लिए सम्मान का क्या मतलब है। ये छोटी सी बातचीत सालों की गलतफहमी दूर कर सकती है।
और आर्थिक स्थिति के लिए,
पहले अपने पैसे से जुड़े विश्वासों को पहचानें। क्या आप मानते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, या मैं पैसे मैनेज नहीं कर सकती। इन विचारों को चैलेंज करें और उन्हें बदलें, जैसे मैं पैसे कमाने और संभालने के नए तरीके सीख रहा हूँ। ये सोच बदलने से आपके एक्शन बदलेंगे।
और अगर जिंदगी में दिशाहीन महसूस कर रहे हो, लॉस्ट,
तो अपने मूल्यों वैल्यूज को पहचानने की एक्सरसाइज करें। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? आजादी, सुरक्षा, प्यार, तरक्की, रोमांच। जब आपके वैल्यू साफ हो जाते हैं, तो वे आपकी जिंदगी के कंपस बन जाते हैं। फिर आप अपने गोल्स उन वैल्यूज के हिसाब से तय कर सकते हैं, फैसले लेना आसान हो जाता है।
हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। वाकई ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए है।
बिल्कुल, एक्शन लेने के लिए है।
मेरे लिए इस किताब का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के मुख्य किरदार हैं, दर्शक या शिकार नहीं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, ये सब हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं। और जब हम अपने अंदर की दुनिया बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ये अपनी भूमिका, अपना रोल पूरी तरह से अपनाने जैसा है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये कि ये किताब सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करती, ये ठोस तकनीकें और रणनीतियां देती है इमोशंस को संभालने की, विश्वास बदलने की, लक्ष्य तय करने की। ये सिखाती है कि बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है, उसे प्लान करके, मेहनत करके हासिल करना होता है। ये हमें अपने लक्ष्यों, अपने गोल्स तक पहुंचने का एक तरह का नक्शा देती है।
तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां आप बदलाव लाना चाहते हैं, और आज आप टोनी रॉबिन्स के बताए किसी एक सिद्धांत जैसे ट्रायड या दर्द खुशी को इस्तेमाल करके पहला कदम कैसे उठा सकते हैं, छोटा सा ही सही।
हाँ, पहला कदम। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।